मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 23 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों कल के विषय को ही आज हम लोग अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर में आगे बढ़ाना चाहेंगे और आपको याद होगा कि कल हम लोग सामान्य अध्ययन का जो चौथा पेपर होता है इंटीग्रिटी एथिक्स से रिलेटेड उसकी तैयारी के बारे में बातें कर रहे थे और कल जिस रोड मैप को हमें देखना था समझना था उसकी बहुत थोड़ी सी चर्चा हो पाई थी और उसके तहत केवल यह मैं आपसे बता सका था कि यह पेपर इनफैक्ट एक स्कोरिंग पेपर है। अब अपनी उसी बात को यहां मैं आगे बढ़ा रहा हूं, आप इसे उसी के कंटिन्यूएशन में उसका सेकेंड पार्ट समझें। मित्रों जब मैं ये कहता हूं कि यह स्कोरिंग है तो आपको कभी यह गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए कि यह सरल है। देखिए सीधी सी बात है कि जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का जो कल्चर है या यूं कह लीजिए कि जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें सरल और कठिन की बात आनी ही नहीं चाहिए। इसलिए कि यदि सरल है तो सबके लिए सरल है और यदि कठिन है तो वो सबके लिए कठिन है, तो बात बराबर हो जाती है। तो सरलता और कठिनता के लिहाज से तो सोचा ही नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए 250 नंबर का पेपर है, दूसरों को 70 नंबर मिले हैं, बहुत कम है, 250 में 70 नंबर, फेल होने की जैसी स्थिति है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप पास तो हो ही जाएंगे। आपने 71 नंबर हासिल कर लिए तो कितना भी कठिन होता रहे आपका काम बन गया, क्योंकि आप सरल और कठिन या हाइएस्ट स्कोर करने के लिए एग्जामिनेशन नहीं दे रहे हैं, आप सेलेक्ट होने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए सरलता और कठिनता के रूप में सोचना ही नहीं चाहिए, सोचना इस रूप में चाहिए कि हम कैसे इसकी तैयारी इस तरीके से करें कि दूसरों से बेहतर रहें। तो फिर आप कह सकते हैं कि सर फिर आप सरल और कठिन की बात कर ही क्यों रहे, मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि सरल शब्द का इस्तेमाल मैंने ही किया है। इसका मैं अब आपको कारण बताता हूं। कारण मैं ये बता रहा हूं कि जब आपके दिमाग में ये आता है कि कोई प्रश्न पत्र कोई पेपर या कोई सब्जेक्ट बहुत कठिन है तो आपका दिमाग एक अलग तरह के पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाता है, या कह लीजिए कि उस विषय के प्रति एक दुराग्रह पाल लेता है। और यदि उसने दुराग्रह पाल लिया तो मानकर चलिए कि फिर उस विषय के साथ वह आपकी दोस्ती नहीं होने देगा। जैसे मान लीजिए कि अब आपका जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर है ना, जिसे आप पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर कह ले। अब मैं ये कहने का दुस्साहस नहीं कर सकता कि वो पेपर सरल है, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आप फिर से एक प्रश्न कर सकते हैं कि तो सर आप फिर किसी पेपर को कठिन मत बताइए ना, क्योंकि हमारा दिमाग बेवजह उसके साथ दुश्मनी पाल लेगा और हमें तो सभी पेपर के साथ दोस्ती गांठनी है। नहीं, जो चीज जैसी है वैसी ही मुझे लगता है कि बताई जानी चाहिए कि अगर वह कठिन है तो मैं आपको बताऊं कि वह कठिन है, ताकि जब आपको वह कठिन लगे तो आपके दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि नहीं नहीं ये मेरे लिए ही कठिन नहीं है, ये सबके लिए कठिन है। तो कोई बात नहीं, अगर रास्ता ही इसका ऊबड़ खाबड़ है तो दूसरे चल रहे हैं तो मैं भी चल रहा हूं। अगर वो कठिन है दूसरों के लिए भी कठिन है तो उनका भी स्कोर कम होगा, तो मेरा भी अगर स्कोर कम होगा तो उसको लेकर के मुझे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बस मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि उस कम में मेरा थोड़ा सा उनसे अधिक हो जाए, बस दैट्स ऑल। तो जो रियलिस्टिक अप्रोच होती है वो सर्वोत्तम अप्रोच होती है, बेस्ट अप्रोच होती है, राइट। तो मैं यहां जो फर्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा हूं कि यह सरल है, इसका मतलब आप ये बिल्कुल मत समझ लीजिएगा कि इस पर कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है, यह तो इतना सरल है कि अपने आप हो जाएगा। और सच बात है कि काफी कुछ ही ऐसा है भी, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। दोस्तों ये पेपर सरल है कहने के पीछे जो मेरी धारणा है या कह लीजिए जो कारण है, वो मुझे लगता है कि अगर यही पेपर यूरोप का या अमेरिका का कोई स्टूडेंट सॉल्व करे उसके लिए यह कठिन हो सकता है, उसके लिए कठिन होगा। उसके लिए कठिन इसलिए होगा क्योंकि उन्हें इसकी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन हम भारतीयों के लिए ये पेपर सरल इसलिए है क्योंकि हम इसकी ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके होते हैं। अब देखिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यहां आपको क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने कभी भी इस विषय से संबंधित कोई किताब सिलेबस के तहत तो नहीं पढ़ा होगा, बताइए कि एथिक्स की कोई किताब पढ़ी, एनसीईआरटी की या इंटीग्रिटी की कोई किताब पढ़ी, इस तरह की कोई किताब आपने नहीं पढ़ी है। और मैं कह रहा हूं कि हम पढ़ चुके होते हैं तो बात थोड़ी सी उठपटांग सी तो है। क्यों उठपटांग सी है और क्यों ये सरल है और क्यों मैं ये कह रहा हूं कि आप पढ़ चुके हैं? देखिए, हमारी जो परवरिश होती है, हमारा जो सामाजिक, हमारे समाज की जो संरचना है, हमारे समाज का जो स्वरूप है, हमारा जो पालन पोषण होता है, चाहे हमारा पालन पोषण परिवार में हो रहा है, इसके बाद हम अपने शैक्षणिक संस्थाओं में आ जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इसके बाद हम सोसाइटी में आते हैं, वो है ही इस तरीके का, जहां पर ये फोर्थ पेपर की बातें लगातार की जाती हैं और बताई जाती हैं। आप घर परिवार के अपनी स्थितियों से सोचना शुरू करिए कि किस तरह की कहानियां आपको सुनाई जाती थी, चाहे वो तोता मैना की कहानी हो, चाहे वो जानवरों की कहानियां हो, किसी की भी कहानियां हो, चाहे रामायण महाभारत की कथाएं हो, पंचतंत्र की कथाएं हो, सभी कथाओं में आपको कहीं न कहीं एक नैतिक या जीवन की शिक्षा मिलती थी। तो उससे हमारे परिवरिश की शुरुआत हुई है और इसके बाद घर में भी लगातार इसी तरह के इंस्ट्रक्शंस मिलते रहे हैं। और इंस्ट्रक्शंस ही नहीं मिलते रहे हैं बल्कि हम देखते भी रहे हैं कि कैसे कोई बड़ा व्यक्ति आ गया है तो कैसे उसका सम्मान किया जा रहा है, कैसे हमने अगर बदतमीजी कर दी तो पिताजी का एक चांटा पड़ गया है, कैसे हमने अपनी मां से झूठ बोल दिया तो पता लगा कि हमारी मां की झड़प सुननी पड़ी है, दादा नानी अगर हमारे किसी गलत आचरण को देख लेते हैं तो कैसे हमारी धुनाई हो जाती है, हम बोलचाल में कहीं असभ्य शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, अश्लील शब्द बोल जाते हैं तो कैसे पिटाई पड़ जाती है। ये सब चीजें हमारे स्मृतियों में है तो इन सब ने हमें सिखाया ही है ना। और मजेदार बात यह है कि जब आप इन चीजों को किताब में पढ़ेंगे तो उसी तरह के उदाहरण आपको देखने सुनने को मिलेंगे, राइट? तो इसलिए मैंने कहा कि ये हमारे लिए पढ़ी हुई चीजें हैं, समझी हुई चीजें, इसलिए सरल हैं क्योंकि वो हमारे अनुभव के स्तर से गुजर चुकी है। तो क्या फिर अब इसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं? नहीं। तो यहां पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि हम इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, राइट? लेकिन शास्त्रीय तरीके से नहीं जानते, इन्हें हम विषय के रूप में नहीं जानते। परिभाषा क्या होती है, एक का दूसरे से अंतर क्या होता है, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का क्या अंतर है, एथिक्स और वैल्यू में क्या अंतर है, एथिक्स या बिहेवियर और एटीट्यूड में क्या फर्क होता है, ये अंतर हम नहीं जानते। बोल चाल में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन इनकी बारीकियों को नहीं समझते। हमें उन बारीकियों को समझना होगा और फिर सिस्टमैटिक तरीके से समझना होगा। जैसे भाषा, आपको हिंदी आती है, आपको तमिल आती है, आपको उड़िया आती है, अपनी अपनी भाषा, जिस भाषा में आप हैं आपको वह भाषा आती है, राइट? लेकिन वह उस भाषा का व्याकरण आपको नहीं आता, उस भाषा के आप उस तरह से जानकार नहीं है जितना जानकार उस भाषा का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला होगा। तो आपको इस विषय का अब थोड़ा सा व्यवस्थित अध्ययन करना है, लेकिन याद रखिए कि आपको इसका पांडित्य हासिल नहीं करना है, इसमें एमए पीएचडी आपको नहीं करनी है, मतलब इसका एक्सपर्ट नहीं बनना है। यहां मैं फिर से अंडरलाइन करूंगा मित्रों कि आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, यू नीड नॉट टू बी एक्सपर्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। उसका कारण क्या है, क्योंकि पढ़ते समय आपको यह सावधानी रखनी होगी, जब आप एक्सपर्ट बनने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या कि अब आप अपने उत्तर किताबों के आधार पर लिखेंगे, किताबों में जो आपने पढ़ा है वो लिखेंगे, किताबों में आपने परिभाषा पढ़ी है वो लिखने लगेंगे, किताबों में किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर की, एक पर्टिकुलर वैल्यूज की डेफिनेशन बनाने के बाद उसके लक्षण बताए गए हैं आप वो लक्षण लिखने लगेंगे, किताब में दिए गए आप उदाहरण लिखने लगेंगे, किताब में दिए गए आप कथनों को लिखने लगेंगे, सब आप करने लगेंगे। और एग्जामिनर बड़े आराम से समझ जाएगा कि आप रट्टू तोता हैं और बस वही आपके लिए माइनस बन जाएगा, क्योंकि देखिए कि इस पेपर के बारे में जो निर्देश दिया गया है उसको ध्यान से सुनिए, किसी और पेपर के बारे में कोई निर्देश नहीं है, इसे ध्यान से सुनिएगा तब आप मेरी इस बात को समझ पाएंगे। और ये बहुत ही संवेदनशील बात है जो मैं कह रहा हूं, अभी जो मैंने अभी बात कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको अपना स्कोर अच्छा करना है तो इस पर ध्यान देना होगा। फोर्थ पेपर के बारे में इंस्ट्रक्शन क्या है, शुरू में इंस्ट्रक्शन है, इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार से विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे, उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे, उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। आप समझ रहे होंगे कि मैं एक ही वाक्य को तीन बार क्यों बोल रहा हूं। उनकी मतलब किसकी? आपकी, जो इस पेपर को लिख रहा है उसकी। आपकी मनोवृत्ति का परीक्षण कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप किताब से चीजें उठाकर लिख रहे हैं। तो जब किताब से चीजें उठाकर के लिख रहे हैं तो आपकी मनोवृत्ति नहीं हुई ना, वो तो टेस्ट आपका ले रहे हैं कि आपके आपके एथिक्स कैसे हैं, आपकी इंटीग्रिटी कैसी है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, और आप किताबों से उठाकर लिख रहे हैं तो आपका कैसे टेस्ट होगा। मैं मित्रों इसे इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं क्योंकि इसे पढ़ना जानना बहुत जरूरी है। देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इश्यू रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ एंड हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू वेरियस इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स फेस्ड बाय हिम इन डीलिंग विद सोसाइटी। कि जब आप समाज को फेस करेंगे, समाज में जाकर जब आप काम करेंगे तब आपका एटीट्यूड कैसा है, एप्टीट्यूड कैसा है, आपकी इंटीग्रिटी कैसी है, आपकी प्रोबिटी कैसी है, इसका वो परीक्षण कर रहे हैं। तो इसका परीक्षण तो तभी होगा जब आप अपनी तरफ से लिखेंगे, अपने विचार लिखेंगे, किताबों से विचार नहीं। किताबों से तो आपने केवल समझा है। फ्रेंड्स, इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी आप इसमें स्कोर कर पाएंगे। अदरवाइज स्कोर करने में आपसे चूक हो जाएगी। तो अब आप देखिए कि पहली चीज को अब आप इससे जोड़ दीजिए। बीच में स्टडी जो आई है केवल इंटरमीडिएट मीडिएटरी है, वो केवल बीच में है। एक तरफ मैंने कहा कि आपका पोषण इसी तरीके से हुआ, आप जानते हैं एथिक्स क्या है, आप जानते हैं वैल्यू क्या है, आप जानते हैं चरित्र क्या है, आप जानते हैं व्यवहार क्या है, आप जानते हैं ईमानदारी क्या है, आप जानते हैं सत्यनिष्ठा क्या है, आप जानते हैं सहानुभूति क्या है, आप सब जानते हैं। आप जानते हैं करुणा क्या है, दया क्या है, प्रेम क्या है, सेवा भाव क्या है, सत्य क्या है। नहीं जानते क्या? आप बताइए, आप जानते हैं, कहानियों समेत जानते हैं, रोज समाज में देख भी रहे हैं, लोगों का मूल्यांकन भी आप इसी आधार पर करते हैं। आप देखिए कि जब हम किसी का मूल्यांकन करते हैं तो इसी तरह से, वो बहुत ईमानदार है यार, वो बहुत झूठ बोलता है, अरे वो तो बहुत चरित्रहीन है, बहुत ही गंदा आदमी है, अरे वो तो बहुत ही रिश्वतखोर है, उसकी क्या बात कर रहे हो। हम इसी तरह से मूल्यांकन कर रहे हैं ना, तो हम तो रोज उन चीजों को कर रहे हैं, तो ये सरल है, राइट। बीच में अध्ययन आ गया, बीच में ये किताबें आ गई हैं। अब हम जो कुछ लेकर के अभी तक आए हैं उनको अब हम किताबों में देख रहे हैं, यानी कि उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद जैसे कि आप नाव में बैठकर नदी को पार कर जाते हैं और फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं, नाव को पीठ पे लाद के फिर आगे की यात्रा नहीं करते, नाव को वहीं छोड़ देते हैं। अब आप किताब को छोड़ दीजिए और अपनी आगे की यात्रा शुरू करिए। आपने अपनी बिखरी हुई चीजों को सिस्टमैटिक कर लिया है, इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब आप उन्हीं समझी हुई चीजों में जो आपके पहले के जो अनुभव हैं उनको शामिल कर लीजिए, जो आप समाज से सीख करके आए हैं। अब तो थर्ड स्टेज है जिसको मैंने कहा कि आप यात्रा कर रहे हैं, एग्जामिनेशन में अब आपको लिखना है, तो बस अपने अनुभवों को उसी शास्त्रीय तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना शुरू कर दीजिए। आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, अनसॉल्व पेपर उठा के देखिए, तो अनसॉल्व पेपर की जब आप भाषा पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि उसमें इसी तरह के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आप क्या समझते हैं। वर्तमान के कुछ उदाहरण देकर इसे समझाइए, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप ऐसे में क्या करेंगे। और उसका जो सेकेंड पार्ट है इस पेपर का, जो केस स्टडी का पार्ट है, उसमें तो सीधे सीधे आप ही होते हैं, आप आपको अपना एक अपनी पहचान दे दी जाती है, आपका अपना एक रोल निश्चित कर दिया जाता है, आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है और कहा जाता है कि बताइए कि आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे, आपका आपके पास क्या हाल होगा। तो आप देख रहे हैं ना कि वहां भी आपको टेस्ट कर रहे हैं। तो मित्रों, इसीलिए तैयारी तो जरूरी है, लेकिन किताब के बोझ से हटकर तैयारी, किताब में पढ़ी गई चीजों को पचाइए। पचाने का अर्थ है कि उन पर विचार कीजिए, उनको एग्जाम्पल में ढालिए। जब आप अखबारों में चीजें पढ़ते हैं इससे संबंधित, तो उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो ईमानदारी से संबंधित हो, इंटीग्रिटी से संबंधित, किसी चीज से भी संबंधित हो, लेकिन वो छोटे मोटे उदाहरण हैं जिनकी खूब चर्चा हो रही है, उन उदाहरणों को कहीं नोट कर लीजिए, ताकि एग्जामिनेशन में आप उन्हीं एग्जाम्पल का उपयोग कर सकें। तो मित्रों, मेरी समझ से इस डेली ऑडियो लेक्चर में मैं यह स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि किस तरीके से सरल भी है लेकिन तैयारी भी जरूरी है, और किस तरीके से अपनी तैयारी और अपनी उस सरलता का इस्तेमाल करके आप अधिक स्कोर कर सकेंगे बताने में मैं सफल रहा हूंगा। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई चीज स्पष्ट रह गई हो, तो आप बिल्कुल ईमेल लिख करके मुझे बताएं, भले ही मैं उसका आपको तुरंत उत्तर न दे सकूं, बाद में ही सही, लेकिन मैं उन्हें स्पष्ट करना चाहूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई हैं। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।